ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
கர்ம சேவி அலக், உபாசனா சேவி அலக, ஜோ அப்னா மே ஹே ஆபா ஹே, உஸ் கோ ஜானனே கே லியே. वो जाना जाएगा, बोले किसके द्वारा? केवल महावाक द्वारा, जिसके लिए शब्द, केवल शब्द महावाक्य जिसे कहते हैं, जो केवल शब्द द्वारा ही जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष की अप्रोक्षानुभूति किससे होगी? केवल शब्द से. इसीलिए सब उसके लिए सुनो. और सुनो कैसे? जो सुनना है उस पर निष्ठा के साथ सुनते हुए उपनिषद अगले मंत्र में कहती है, इसे जो हमें उस तत्व के विषय में सुनना चाहिए. ऐसा नहीं अन्य देवाहुर विद्याया विद्या दारुर विद्या इति सुश्रम धीणाणाम ये न चक्षते विचक्षसे. अर्थात विद्या देवताओं का ज्ञान जो फल बताया गया है, अविद्या कर्म का जो फल बताया गया है, ये ऐसा ही नहीं समझना. इति सुश्रणाम धीणाणाम, भगवती श्रुति कहती इस बात को, इस सिद्धांत को ऐसे ही नहीं समझना कि आपको ऐसे ही कह दिया जा रहा है. सुश्रुणाम हमारी श्रुत परंपरा है, श्रुति है. श्रुति, श्रुति का अर्थ होता है श्रुणात श्रुति, जो आदि से एक परंपरा चली आ रही है ऋषियों की, एक संप्रदाय चला आ रहा है ऋषियों का, उसको कहते हैं सांप्रदायिक प्रदत्त ज्ञान. जो परंपरा से, किसी सांप्रदायिक से जो निरंतर सुनते चले आ रहे हैं. और सुनने के लिए ताकत चाहिए नारायण, किसकी? श्रद्धा की. और जिनके अंदर वो श्रद्धा है, वो धीमान जो पुरुष हैं, वो जो धीमान पुरुष हैं, धैर्य करने वाले बुद्धिमान, धीमान पुरुष माने बुद्धिमान. बुद्धिमान कौन है? जिनकी बुद्धि, जिन्होंने जन्म मृत्यु सुख दुख हानि लाभ यश अपयश दोनों से, जिन्होंने अपनी बुद्धि को अलग रख करके इन दोनों को अलग अलग देखा है. अर्थात बुद्धिमान पुरुष कौन? जिनकी बुद्धि से राग हट गया है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को राग से अलग कर दिया है, उसको कहते हैं धीर पुरुष, उसको कहते हैं बुद्धिमान पुरुष. जिसके अंदर राग होगा, राग बुद्धि में यदि राग होगा तो बुद्धि पक्ष करेगी, बुद्धि में यदि द्वेष होगा तो बुद्धि घृणा करेगी. और जो बुद्धि घृणा कर रखती है, जो बुद्धि राग रखती है, जो बुद्धि द्वेष रखती है, जो बुद्धि ईर्ष्या रखती है, वो बुद्धि सत्य का दर्शन नहीं कर सकती, सत्य को नहीं सुन सकती है, सत्य को ग्रहित नहीं, ग्रहण नहीं कर सकती. इसलिए ये श्रुति परंपरा से धीरवान पुरुषों से, धीवान बुद्धिमान पुरुषों से हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ये श्रुति कहती है. ये बात परंपरागत चलती चली आ रही है. क्या बात चलती आ रही है? कि ये बात चलती आ रही है कि कर्म की उपासना करने वाले अंधकार को प्राप्त होते हैं, और देवताओं की उपासना करने वाले महाअंधकार को प्राप्त होते. यहां देवताओं से अभिप्राय वासना समझना चाहिए, ज्ञानेन्द्रियों की वासना और अविद्या से समझना चाहिए कि जो व्यक्ति कर्म की जड़ता को पकड़ते रहते हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों के पीछे एक शब्द जुड़ा हुआ है, योग। कर्म, कर्म नर। अच्छा, एक बात यहां है, कर्म से जड़ता की प्राप्ति होती है ऐसा समझ करके कर्म का त्याग कर देना, छोड़ देना, वो भी गलती है। और देवताओं की उपासना से भोग की प्राप्ति होती है ये समझ करके देवोपासना छोड़ देना, ये महागलती है। बहुत से लोग कर्म जड़ता का कारण है ऐसा समझ करके कर्म का त्याग करके उपेक्षा करके बैठ जाए और उपासना से भी भोगों की प्राप्ति होती है ऐसा समझ करके सब देवार्चन देव उपासना छोड़ करके बैठ जाए, ये और भी गलती है। परंतु याद रहे, न हमें कर्म छोड़ना है न उपासना छोड़नी है। छोड़ना नहीं है, न कर्म छोड़ना है, कर्म छोड़ दें तो गलती, उपासना छोड़ दें तो महागलती, महाभूल। इसलिए कहा कि इन दोनों का, जैसे कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्रियों का समुच्चय है, दोनों साथ साथ चलती हैं। कितना बढ़िया हमारी कर्मेंद्रियों का और ज्ञानेंद्रियों का समुच्चय है, ऐसा ही हमारे जीवन में कर्म और उपासना का समुच्चय होना चाहिए। कर्म भी करो, उपासना भी करो, उपासना मत छोड़। एक तरफ तो ये कहा कि उपासना करने वाला और गहरे अंधकार में जाता है, और दूसरी तरफ इसका अर्थ भगवती समझाती है, उपनिषद समझाती है कि हमें इन दोनों में भोगासक्ति को छोड़कर के, भोग में जो आसक्ति रखकर हम भोग के लिए उपासना करते हैं, उसके लिए उपासना न करें। हमारी उपासना कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सहज। मैं कई बार कहती हूँ, यदि भोग में कर्ता भाव रहा, भोक्ता भाव रहा, तो स्व के प्रति हमारा ज्ञान कर्ता और भोक्ता का बना रहा। स्व के प्रति हमारा ज्ञान क्या है? मैं करने वाला हूँ। जब करने वाला हूँ ये ज्ञान स्व के लिए होता है, तो हम कर्ता बनकर, कर्ता मन्यते इति, अपने आप को कर्ता मान करके जो कर्म हम करते हैं उसको भोगने के लिए हमें व्यवस्था होती है। इसलिए न मैं करता हूँ, जब करता है नहीं तो भोगता कहाँ? केवल अपने स्वरूप पर विचार कर, ज्ञान से योगी कहा गया, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। स्वज्ञान को, जो स्वज्ञान है वो महावाक ज्ञान माने आत्मज्ञान, महावाक से, शब्द से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, महावाक्य ने जो हमें समझाया, उस महावाक्य ज्ञान से, आत्मज्ञान से युक्त होकर, आत्मज्ञान के द्वारा अर्थात आत्मस्थित होकर, एकत्व मन पश्यति, इस प्रकार का सब में, कर्म में, उपासना में, दोनों में एकत्व का दर्शन करते हुए जो सहज रूप से, इसलिए ज्ञानी कुछ करता नहीं है, वो करता होते हुए भी अकर्ता है और अकर्ता होते हुए भी करता है। जैसे भगवान सूर्य नारायण के उदाहरण से ही समझ लो, सूर्य उपासक भगवान सूर्य देव से प्रार्थना कर रहा है, हे सूर्य देव, आप कितने परोपकारी हैं, आपके परोपकार का कोई अंत नहीं। आप करोड़ों करोड़ों बलशाली ये अंधकासुर को समाप्त करके आप प्रकाश देते हैं सबको, सबका अंधेरा मिटाकर दूर करते हैं। आपकी कृपा से सबको प्रकाश मिलता है। आप बड़े महान हैं। सूर्य भक्त सूर्य की प्रशंसा कर रहे हैं। अपनी इस प्रशंसा को सुनकर सूर्य देव प्रत्यक्ष हो गए और उस भक्त को कहने लगे, बोले भक्त तुम जो जो बात मुझसे कह रहे हो कि तुम ये करते हो, अमुक करते हो, तमुक करते हो, ये करते हो, वो करते हो, सूर्य देव ने कहा मैं कुछ नहीं करता। भक्त कहता है करते हो, और सूर्य देव कहते हैं नहीं करता हूं। बोले कैसे नहीं करते हैं? क्योंकि जिसे तुम करना बता रहे हो वह तो मेरा स्वभाव है, प्रकाश तो भगवान सूर्य का स्वभाव है, इसलिए जो हो वो स्वाभाविक हो, नैसर्गिक हो, स्वाभाविक रूप से धर्म हमारा स्वभाव बन जाए, धर्मशीलता हम धर्म हमारे सील की सिले, धर्मशील, दयाशील, करुणाशील, क्षमाशील। आप क्या कहते हैं, ये तो बड़ा क्षमाशील व्यक्ति है, ये बड़ा ही दयाशील है, करुणाशील है, धर्मशील है। ये जो धर्म शब्द है, करुणा शब्द है, दया शब्द है, ये किसके साथ जुड़ गया? अपने स्वभाव के साथ। जैसे आपने अपने स्वभाव में जोड़ लिया, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, और इस प्रकार कर्ता और भोक्ता स्व के लिए समझ रहे हैं, यह जो समझा आपने ये तो, और ऐसा समझ करके आप कर्ता और भोक्ता समझ करके धर्म करोगे, दया करोगे, करुणा करोगे, परोपकार करोगे, सेवा करोगे, मैं सेवा करने वाला हूं, यह स्व को समझ करके यदि आप सेवा करोगे तो उस सेवा का फल भी आपको मिलेगा, उस दया का फल भी आपको मिलेगा, उस करुणा का फल भी आपको मिलेगा, उस परोपकार का फल भी आपको मिलेगा, और उसका फल भोग आपको प्राप्त होगा। यदि आप सील के साथ करेंगे, सील कहते स्वभाव को, अर्थात स्वस्वरूप को, स्वस्वरूप में अपनी जो अहम में जो वृत्ति है ना, अहम वृत्ति, ये अहम जब जीव के साथ जुड़ जाता है तो कर्ता भोक्ता मानता है, और जब ये वृत्ति जीव से बुद्धि से अलग होती है और ये शुद्ध वृत्ति अहम वृत्ति, तब केवल एक ब्रह्मास्मि, ब्रह्म स्वरूप में महावाक के द्वारा और इस ब्रह्मवित स्वभाव से, ब्रह्मवित स्वभाव से सील से युक्त होकर जो कुछ भी होगा वो आपके लिए कभी बंधन का कारण नहीं बनेगा, स्वाभाविक होगा। ज्ञानी दया नहीं करता है, ज्ञानी सेवा नहीं करता है, ज्ञानी कुछ करता ही नहीं है, जैसे सूर्यदेव कुछ करते ही नहीं है, वो अपने को कर्ता नहीं समझते हैं, वो तो उनका सहज स्वभाव श्री है प्रकाश, वो स्वाभाविक रूप से अंधकार वो प्रकट होते हैं, अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी के जीवन में ये सत्कर्म तो स्वाभाविक रूप से इतनी सहजता से होते हैं, इसलिए जीवन मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा स्वभाव बन जाए, ये सब चीज हमारे स्वभाव में आ जानी चाहिए, चरित्र हमारा ऐसा हो जाना चाहिए, कर्म जिन्होंने साक्षात्कार किया है, इसलिए इस बात को श्रुति कहती है अन्य देवाहुर विद्याया दाहुर विद्याया इति सुश्रम धीराणाम नचिक्षसे। ऐसा नहीं, जिन्होंने उस तत्व का इन साक्षात्कार किया है, ऐसे धीरवान धीवान जो व्यक्ति हैं, उन परंपरा से जो सुनते चले आ रहे हैं, क्या सुनते चले आ रहे हैं कि भैया देवोपासना करने से भोग की प्राप्ति, भोग लोग को स्वर्ग आदि लोग मिल जाएंगे, और कर्म की उपासना करने से पितृलोक आदि मिल जाएंगे। तो किसी लोग की कामना को लेकर जिस प्रकार ये जितने भी भोग हैं, लोक हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, परिवर्तनशील होने वाले, नष्ट होने वाले, शीर्णे पुण्य मृत लोगे प्रवशंती। यदि किसी पुण्य आदि के कारण कुछ काल के लिए स्वर्ग भी मिल जाए तो फिर लौट करके आना पड़ता है। आप लोग भागवत कई बार सुने हैं, सुनते हैं, भागवत में आपने राजा ययाति की कथा सुनी है ना? महाराज ययाति इतना पुण्य किए, इतना पुण्य किए कि पुण्य से उन्हें स्वर्ग मिला, स्वर्ग ही नहीं मिला, इंद्र का आधा सिंहासन छिन गया। इंद्र जिसका स्वर्गादि लोग में एक छत्र राज चले, और आज उनका राज्य आधा छिन चुका है। आधे हिस्से में महाराज ययाति भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज थे, और उन्हीं के महाराज ययाति ने आधा सिंहासन ले लिया। इंद्रदेव को लगा कि बस मेरा सिंहासन आधा तो गया, अब पूरा भी जाने वाला है। इंद्रदेव मन में विचार करने लगे कि कैसे मैं अपने सिंहासन को बचाऊं। बोले महाराज, जब तक महाराज ययाति का पुण्य इतना अधिक है, इतना अधिक है, इतना अधिक है कि ये इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। तब इंद्रदेव ने युक्ति लगाई, युक्ति में ही मुक्ति होती है। इंद्रदेव ने युक्ति लगाई कि कैसे महाराज ययाति को इस सिंहासन से हटाया जाए। तो इंद्रदेव उनके पास बैठ करके पूछने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे, आप महान हैं, धन्य हैं, आपका कितना पुण्य है, कितना परोपकार है, कितना आप अच्छा आपका कार्य है कि आपको स्वर्ग लोक मिला, और स्वर्ग लोक में आधा देव लोक आपके पास में, और इतने महान हैं। जब उनके कार्यों की प्रशंसा होने लगी, तारीफ होने लगी, इसीलिए वेदांत में कहा आत्म अनुशंसा, जैसा पाप दूसरा कोई नहीं है ना। याद रखना, महापाप हम गिनते हैं, महापाप में क्या गिनते हैं, सुरापान करना, व्यभिचार करना, परंतु आजकल तो सुरापान करना आजकल की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है, परस्त्री गमन करना, जुआ खेलना, और आजकल जिसे हमारे शास्त्रों में महापातक गिनाए गए हैं, जिस सुरा के पात्र में यूं तो गंगा जल की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि गंगा जी जब आती हैं हिमालय से तो कितने नाले, कितनी नदियां गंगा जी के अंदर मिलते जाते हैं, और जो जो गंगा जी में मिल गया वो सब गंगा के समान पवित्र हो गया, फिर वो नाला नहीं रह गया, वो सामान्य नदी नहीं रह गई, वो सब गंगा जी ही बन गए, इतनी पवित्रता है। परंतु किसी मदिरा के पात्र में यदि गंगा जल रख दिया जाए तो उस पात्र का जल भगवान को चढ़ाने के योग्य नहीं रह जाता, वो पवित्र नहीं रहता। इससे ये स्पष्ट है कि मदिरा को गंगा का जल भी पवित्र नहीं कर सकता। जो गंगा ऐसे बड़े बड़े नद नालों को पवित्र कर देती है वो मदिरा को पवित्र नहीं कर सकती, वो पात्र ही अशुद्ध हो जाता है। तो यूं तो इतना बड़ा उसका दोष बताया गया, परंतु आज की संस्कृति और ये जिन्होंने अपने उदर को पात्र बना के रात दिन उसमें डालते हैं, उसको कौन शुद्ध करेगा, ये तो मैं नहीं कह सकती। भगवान ही, भगवान का नाम ही जब कभी उसे पश्चाताप हो, प्राश्चित्य हो, तभी कहीं भगवत नाम से शुद्ध हो सकता है ना। महापातक गिनाए गए, महापातक सुरा, जुआ, व्यभिचार आदि ये महापाप, परंतु इससे भी बड़ा पाप है। इन महापापों में सबसे बड़ा पाप क्या है? आत्मानुशंसा। जब हम अपनी प्रशंसा को अपने कानों से सुनते हैं तो हमारे अंदर जो खुशी मिलती है ना, हम नहीं समझते हैं कि जिसे हम अपनी खुशी समझ रहे हैं, ये जो हो रही है ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। आत्मानुशंसा नहीं सुननी चाहिए, शास्त्र इसके लिए निषेध करते हैं। और जो हमारी तारीफ करता है ना, उसे लगता है कि ये व्यक्ति कितना प्यारा है, इसे तो क्या हम दे दें। ये हम नहीं सोचते हैं कि ये मेरी आत्मानुशंसा करके मुझे क्षीण कर रहा है। यूं तो हमें आकर कोई गाली दे देना, उसे हम सहन कर नहीं पाएंगे, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने मुझे ये अपशब्द कह दिए। और जो हमारी प्रशंसा करता है वो हमें इतना प्यारा लगता है कि हम सोचते हैं इसे न जाने क्या दे दें। तो कहने का अर्थ ये, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जो हमें गाली दे रहा वो है, या जो हमारी प्रशंसा कर रहा वो है? परंतु होता क्या है, प्रशंसा करने वाला अच्छा लगता है और गाली देने वाला बुरा लगता है। इसलिए कभी इस प्रशंसा के विष में मत आओ, इसे मत पियो। जहां ऐसी कोई चर्चा होती वहां से उठ के चला जाना चाहिए। अपने आप को उसमें, यही भूल राजा ययाति से हुई। जैसे जैसे इंद्र प्रस्तारित करता गया, उनकी प्रशंसा करते रहे, वो आत्मानुशंसा के मद में आते हुए अब तो अपने किए हुए सुकृत का, पुण्य का बखान करने लगे। जैसे अपने मुंह से वो बखान करते चले गए, उनका पुण्य क्षीण होता गया और अंततः परिणाम ये हुआ, राजा ययाति स्वर्ग से पृथ्वी में उल्टे गिरते चले आए। जब उल्टे आए तो तब उनको ध्यान हुआ कि ये कौन है। नीचे से जिन पुरोहितों ने, जिन ज्ञानियों ने उनसे ये कर्मानुष्ठान कराया था, देखा कि वो तो उल्टे चले आ रहे हैं। महाराज ययाति ऐसे आ रहे, तब कहा ठहरो महाराज, आपको गिरने से हम बचाएंगे। और गिरने से बचाया उनको, कहा कि आपको पृथ्वी में औंधे मुंह गिरने नहीं देंगे। गिरने से उन्हें बचाया, बोले किससे? जब उनको तत्व का बोध दिया, उपदेश दिया आत्मा का, तो तब वह अपने स्वरूप के द्वारा अपने को पहचान करके ही अपने को बचाया जा सकता है नारायण। इसलिए मैं वो नहीं हूं जो प्रशंसा से फूल जाए और जो निंदा से डर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उपनिषद कहती है धीर व्यक्ति, धीवान व्यक्ति, अर्थात वो धीवान बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वही है जो किसी प्रलोभन में नहीं आता है। सुख दुख हानि लाभ यश अपयश जन्म मृत्यु, इस सब को समान रूप से, इन सब में अपने आप को सम रखता हुआ, स्थिर रखता हुआ, अपनी बुद्धि को स्थिर कर न राग से युक्त होता है, न द्वेष से युक्त होता है। और ऐसा स्पष्ट रहकर वो कर्म योगी वह भक्त उपासना करने वाला भक्त योगी वही ज्ञान योगी है, और संसार में योग युक्त होकर कर्म करना है। ये चर्चा आगे की कल और स्पष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम शांति।